हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरी एयरफोर्स जर्नी के बारे में। लाइक मैंने कैसे एयरफोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड उसके बाद में क्या क्या चीज़ें हुई इस जर्नी के दौरान एंड आप इस चीज़ से क्या क्या सीख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये एपिसोड आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा होगा। सो लेट्स गेट इन टू द पॉडकास्ट एंड सी वॉट इज इन द एपिसोड। हाई एवरी वन, आई एम भास्कर मिश्रा एंड वेलकम टू द वुल स्पिरिट शो। सो बेसिकली आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम देखने वाले हैं मेरी एयरफोर्स जर्नी के बारे में। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ वियर्ड होगा कि अगर आप सुनेंगे कि मेरी जो एयरफोर्स की जर्नी है वो मूवीज़ के थ्रू स्टार्ट हुई थी। यस, एक्चुअली मैंने दो मूवीज़ देखी थी जिनका मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। द फर्स्ट वन इज़ लक्ष्य, ऋतिक रोशन की एक लक्ष्य करके मूवी है, वो मैंने देखी थी। एंड सेकेंड मूवी जो है वो साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सूर्या द ब्रेव सोल्जर है। अगर आप भी ये दोनों मूवीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंस्पायरिंग और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। लक्ष्य मैंने इसलिए देखी थी बिकॉज मुझे किसी ने बोला था कि अगर आप लक्ष्य देख लोगे तो आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, एंड दैट लाइन वॉज वेरी ब्यूटिफुल। सो मैंने लक्ष्य मूवी देखी एंड वो देखने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, मुझे भी मेरी कंट्री को सर्व करना है एंड आई वॉन्ट टू मेक माई फैमिली प्राउड। एंड जब मैंने सूर्या द ब्रेव सोल्जर देखी, सो उस मूवी का जो मेन थीम है वो है कैरेक्टर, कह रहा हूँ कि इंसान कुछ भी हो जाए अपने कैरेक्टर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सो दैट टू मूवीज इन्फ्लुएंस्ड मी वेरी मच। सो आई चेकड आउट ऑन इंटरनेट कि अभी कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। सो वहाँ पे अभी एयरफोर्स की वैकेंसी निकली हुई थी। सो आई फिल्ड अप द फॉर्म एंड उसके बाद में नवंबर 2019 की बात है, मैंने फॉर्म फिलअप किया एंड उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो नहीं रही थी बिकॉज मेरे कॉलेज भी साथ साथ चल रहे थे सेकेंड ईयर के। सो इतना अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया। बट सडनली 2020 मार्च के अंदर ये कोविड पेंडेमिक आया एंड एवरीथिंग हैज़ चेंज। मतलब अभी भी ये पेंडेमिक इतना ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है हमारे साथ में, हमारी इकोनॉमी को इसने तोड़ दी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई इस क्राइसिस की वजह से। एंड मैं भी घर आ गया था एंड घर आने के बाद मैंने अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की बिकॉज घर पर कुछ काम रहता नहीं था, सो मैं अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहा था। सो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की एंड जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उस टाइम मुझे भी कहीं ना कहीं एक चीज़ पैनिक कर रही थी कि जितनी भी IITs है, नीट एग्ज़ाम है, ये सारी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी एंड कहीं ना कहीं एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो रहा था। सो मैं प्रिपेयर कर करके थक गया था बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6 months एंड अभी तक भी कुछ अपडेट नहीं आया। एंड फाइनली आफ्टर 11 months एयरफोर्स एग्ज़ाम हैपेंड इन नवंबर 2020। जब कोविड के हालात थोड़े कंट्रोल में आए, देन नवंबर 2020 में हमारे एयरफोर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एंड वो एग्ज़ाम में देने गया। उसके बाद मुझे रिजल्ट का वेट था बिकॉज मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था एंड मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की थी इस एग्ज़ाम के लिए बिकॉज जैसे कि आप सबको क्लियर ही है कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था। सो एग्ज़ाम का रिजल्ट 15-20 दिन के अंदर ही आ गया बिकॉज एयरफोर्स अपना एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट करवाता है। सो उसके अंदर मैं सेलेक्ट हो गया था एंड रिजल्ट देखने की बात आई तो फिर रिजल्ट में भी मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा बिकॉज जिस इवनिंग में अगर रिजल्ट आया तो उस इवनिंग मैंने ट्राई किया बट जो साइट है वो खुल नहीं रही थी बिकॉज इतने सारे बच्चे जब एक ही साइट पे जाते हैं तो साइट क्रैश हो गई थी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग 4 AM मैं 4 बजे उठ जाता हूँ सुबह। सो मैंने चेक किया उस टाइम तो मुझे दिखा कि मैं सेलेक्ट हुआ। सो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज लाइक कि आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एंड मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया, मैंने कहा मम्मी मेरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सो मैं मोम वाज लाइक कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है एयरफोर्स में, काफ़ी लाइफ का रिस्क रहता है। एंड माई फादर वाज ऑपोजिट, माई फादर वाज लाइक कि नहीं नहीं जाओ, काफ़ी प्राइड वाली जॉब है एंड एवरीथिंग, अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है आपको। सो आई वॉज हैप्पी। सो अब मुझे फेज सेकेंड जो कॉलिंग लेटर है वो आया था फेज 2 के लिए, जिसके अंदर हमारा इंटरव्यूज़ और फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सो वो हमारा था जोधपुर के अंदर एंड मुझे वो लेटर आया, मैं जोधपुर गया एंड मेरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट हुआ बिकॉज मैंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर किया था तो वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। एंड देन उसके बाद में एक प्रॉब्लम आई वहाँ पर कि मेरा जो एनसीसी का सर्टिफिकेट था उसके ऊपर मेरा नाम गलत था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके 3 मार्क्स मिलते हैं एयरफोर्स के अंदर। सो फिर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, बिकॉज मेरा इंटरव्यू होने वाला था बट मेरा नाम गलत था तो मुझे वो 3 मार्क्स नहीं मिलने वाला था। सो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। एंड देन उसके बाद में वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं कैडेट, आपको टाइम मिलेगा एंड उस टाइम के अंदर अगर आप सर्टिफिकेट सही करके ले आते हैं देन उसके बाद में आप जो है आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको 3 मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। एंड वहीं पे फिर मैंने एक क्वेट लिखा हुआ था, एयरफोर्स की वॉल्स पे बहुत सारे मोटिवेशनल क्वेट्स लिखे हुए होते हैं, वहाँ पे एक क्वेट लिखा हुआ था एंड वो पढ़ा तो उससे मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। एंड वो ऐसे करके था कि कुछ कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, पास्ट को भूल जाओ और उससे सीखो एंड प्रेजेंट में ध्यान लगाओ। एंड उसके बाद मैं इंटरव्यू देने गया एंड मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया फाइनली। एंड जब इवनिंग में हम निकल रहे थे तो हम 2 तरीके के बच्चे थे, अप्रोक्स 50-60 बच्चे जो कि इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, बिकॉज वहाँ पे एक बंदा था जिसके तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, उसका कट ऑफ में भी आउट होने का कोई चांस नहीं था बट ही वॉज क्राइंग लाइक हेल कि उसका इंटरव्यू में नहीं हुआ। एंड दूसरी तरफ हम थे जो बहुत ही ज़्यादा खुश थे बिकॉज हमारा इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया था। तो वो जो फीलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फीलिंग लगी वो, कि एक तरफ मैं खुश हूँ, दूसरी तरफ मेरा एक दोस्त बना था वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उदास है बिकॉज उसका नहीं हुआ। सो क्या कर सकते हैं अब इसमें। एंड देन उसके बाद में हमें वहाँ से मेडिकल का लेटर मिला एंड वहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ हुई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट की उस चीज़ ने कि वहाँ पे हमारे से एक एनवलप भरवाया गया था, उसके ऊपर हमारा एड्रेस लिखा गया था एंड उस एड्रेस पे ये था कि अगर हम मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं देन उसके बाद हमारा ज्वाइनिंग लेटर है वो एनवलप था वो। सो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। एंड देन उसके बाद में हम वहाँ से निकलते हैं, हमारे को मेडिकल मिलता है एंड जो मेरा मेडिकल सेंटर आया था वो गाज़ियाबाद आया था हिंडन सिटी के अंदर। सो मैं वहाँ पे गया दिल्ली एंड दिल्ली से मैं फिर गाज़ियाबाद गया एंड वहाँ पे मेरा मेडिकल चेकअप हुआ। एंड मेडिकल का दिन आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में एक तरीके से सबसे बुरे दिनों में से एक था, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। जब मेरा पूरा मेडिकल चेकअप हो गया था देन उसके बाद मैं वहाँ पे सर थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप बाहर जाके बैठ जाओ, आपका सिलेक्शन हो गया। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश था बिकॉज अगर कोई ऐसा बोल देता है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार जितना भी हमने अभी तक हार्डवर्क किया था उसने पे ऑफ कर दिया है। एंड देन उसके बाद मैंने देखा कि और भी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं बाहर एंड सर सबको यही बोल रहे कि आप सबका सिलेक्शन हो गया। एंड देन 50% बच्चे बाहर बैठे हुए थे एंड 50% बच्चे अंडर बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद में सब वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हम सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, एक्चुअली में माजरा क्या है ये। तो थोड़ी देर बाद हमें पता चल रहा है कि हम लोग वो थे जो सेलेक्ट नहीं हुए और जिनको वो लोग अंदर बिठा रहे थे वो लोग सेलेक्ट हो चुके थे। सो आई फेल्ट लाइक कि यार ये क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं एक्चुअली में आउट कहाँ हुआ। सो उन्होंने कुछ 2-3 पॉइंट बना के दिए मुझे कि ये आपके फिजिकल फिटनेस में दिक्कत है, सो आपको रीमेडिकल की डेट अलॉट होती है एंड उसके बाद में आप रीमेडिकल में वहाँ अपीयर रहेगा और वो जो डिसीजन होगा सिलेक्शन बोर्ड का वो फाइनल होगा। एंड मैंने कहा ठीक है चलो 21 दिन का टाइम मिलता है। 21 दिन के टाइम के अंदर फिर उसमें सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि मेरा वेट जो था वो मुझे कम करना था, अप्रोक्स मुझे 10 kg वेट कम करना था बिकॉज लॉकडाउन में खा के मतलब मेरा जो पेट है वो पता नहीं इतना बाहर निकल गया था कि मैं खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता, बट घर पे रहता तो मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा निकल गया था एंड मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सो मुझे 10 किलो वेट कम करना था तो मैं और मेरे पास दिन थे सिर्फ 21 दिन के अंदर 10 किलो वज़न कम करना एक तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है खुद के बॉडी के लिए भी और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता है। बट मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूट्रिशंस वगैरह लिए, मैंने मेरा बॉडी वेट कम किया एंड उसके बाद मैं रीमेडिकल में अपीयर हुआ। रीमेडिकल में अपीयर होने के बाद उन्होंने मेरा चेकअप किया सर ने, वहाँ पे मेरे एक्चुअली ईयर में भी कुछ प्रॉब्लम थी और मेरी आईज़ जो आईसाइट थी मेरी उसमें भी -0.5 का जो चश्मा था वो भी लगा। मैं जब रीमेडिकल में अपीयर हुआ तो वहाँ पे सर ने बोला कि आप अनफिट हो। उन्होंने चेकअप किया सारा और उन्होंने बोला आप अनफिट हो। एंड उस पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मुझे रिएक्ट कैसे करना चाहिए, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक कि मैं एक फेलियर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड कुछ भी अब पॉसिबल नहीं होने वाला है, बिकॉज मेरी इतनी जो मेहनत थी अप्रोक्स एक साल की, वो सब यहाँ एंड में आकर के पूरा ज़ीरो हो गया। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बिकॉज मैंने इतने ज़्यादा हार्डवर्क किया था उस चीज़ के लिए कि मैं उसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड वो जो फीलिंग थी काफ़ी ज़्यादा अजीब फीलिंग थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ। एंड देन वहाँ पर मेरे साथ दो तीन लड़के और थे, वो भी अनफिट थे और साथ वाले थे वो भी फिट थे, तो वापस ही ये वही फेस सेकेंड वाली सिचुएशन हो गई। बट इस बार जो इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो गई थी, बिकॉज मैं उन बच्चों में था जो सेलेक्ट नहीं हुए थे एंड मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था। एंड वहाँ से निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा सैड मैं ही हुआ हूँ इस पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। बट मैं रॉन्ग था, मेरे से भी ज़्यादा सैड दो लोग और थे, और वो थे मेरे मम्मी पापा, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे का नहीं हुआ तो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया है। एंड पता नहीं वो फीलिंग क्या थी, मतलब मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। एंड वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी कि आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, लाइक नोबडी गिव्स अ फक, ये रियलिटी है। एक्सेप्ट यू एंड योर पेरेंट्स, नोबडी गिव्स अ फक। इवन यहाँ तक भी हुआ था कि मेरे जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे उनसे भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि लाइक मैं मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, आई नीड सम हेल्प, बट नोबडी केम फॉरवर्ड। सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट की, बट एट द सेम टाइम मैंने इस एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने आप को भी एक्सप्लोर किया एंड मैं उस डिप्रेशन से अकेले ही लड़ा एंड मैं उस चीज़ से बाहर आया। एंड बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, बट द थिंग इज़ कि अगर मेरी वजह से कोई इंसान खुश हो पा रहा है या फिर मेरी वजह से किसी इंसान की लाइफ में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, सो दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर मी। एंड यही मुझे चाहिए था। सो मैं उस चीज़ से अकेला लड़ा, फाइट किया उस डिप्रेशन से और मैं बाहर आया। सो लाइफ में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, बिकॉज अगर मैं मम्मी पापा के सामने थोड़ा सा वीक होता तो वो और भी ज़्यादा वीक हो जाते। लाइक आपको फील आप आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैंने उन्हें इतना सब कुछ नहीं बताया एंड देन आई फाइट अलोन एंड देन मैं उस चीज़ से बाहर निकला एंड देन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट की लाइक ठीक है, अगर मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ, मेरी वजह से इस वर्ल्ड के अंदर उस थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। सो जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो मुझे दो तीन मेरे फ्रेंड्स से कॉलेज को उनका DM आया कि लाइक काफ़ी अच्छा बना रहे हो भाई, तुम्हारा पॉडकास्ट सुन के हमें भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। सो भले ही वो नंबर बहुत कम थे, अप्रोक्स 4-5 जनों ने ही तारीफ़ की होगी, बट द थिंग इज़ कि नंबर्स मैटर नहीं करते हैं, बट हेल्प मैटर करती है कि आप कितने जनों का हेल्प करवा रहे हो। सो ये थी मेरी एयरफोर्स जर्नी एंड मेडिकल इशू की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, बट अगर मैं सेलेक्ट हो जाता देन शायद मैं अभी नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ जो है ब्लू यूनिफॉर्म पहन चुका होता है एंड मैं मेरे जो ड्रीम है वो मैंने अचीव कर लिया होता। बट द थिंग इज़ कि मैंने भी अभी भी गिव अप नहीं किया है, मैं अभी आगे और भी ऑफिसर से एंट्री दूंगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ इन द वॉम्ब ऑफ फ्यूचर, आई डोंट नो क्या होने वाला है। बट द थिंग इज़ कि यार जब आप मेडिकल में आउट हो जाते हो देन उसके बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। अगर मैं इंटरव्यू में आउट होता या रिटर्न में आउट होता देन मुझे ऐसा लगता है कि यार ठीक है चलो मेरी गलती थी तो मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, बट यहाँ पे तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। लाइक गीता का भी श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पता नहीं मैंने इतना सारा कर्म किया वो कहाँ गया, एंड में आके सब जीरो हो गया है मुझे ऐसा लगा। बट कोई बात नहीं, लाइफ में समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, सो बस हम कठपुतली की तरह उसे देख सकते हैं। सो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अफ्रेड भी हूँ कि आगे मैं एग्ज़ाम्स दूंगा तो उनमें क्या होगा, बट एग्ज़ाम तो मुझे देना है बिकॉज आई वॉन्ट दैट ब्लू यूनिफॉर्म, सो लेट्स सी कि क्या होता है। सो आई होप कि इस पॉडकास्ट के अंदर आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन और कुछ लर्निंग्स आप इस पॉडकास्ट से लेके जाएंगे, एंड मैं इसी तरीके से पॉडकास्ट आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरा पॉडकास्ट सुनने आते हैं, एंड सॉरी फॉर दी बैड ऑडियो एक्सपीरियंस बिकॉज मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था इस पॉडकास्ट के अंदर। सो इफ़ यू लाइक इट दिस पॉडकास्ट देन डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टिल देन टेक केयर।